मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के तहत आज मैं आप सबसे कल की और इससे भी पहले की जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। और आप जानते हैं कि इस बीच करंट अफेयर्स नहीं लिए जा सके थे, तो डेफिनेटली उन्हें मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा और मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी ही हम इसे पूरा कर लेंगे। तो आज हम केवल करंट अफेयर्स पर ही बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आप सबके प्रति इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बीच में फिलॉसफी पर जो मैंने आप सबसे बातें की हैं, उन बातों को आप सबका बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान भी मिला है। सच पूछे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सबके उन टॉपिक्स पर जो भी बातें मैंने आप सब से कही हैं उनके बारे में इतनी अधिक प्रशंसात्मक बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। हालांकि मेरी कोशिश तो यही थी कि किस तरीके से मैं जो फिलॉसफी के जो कठिन हिस्से हैं उन्हें बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, और आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं ऐसा करने में सफल रहा हूं। तो इसके लिए डेफिनेटली आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। तो आइए दोस्तों, पहले कुछ जो बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जो बातें हैं उन्हें देख लेते हैं। कल आप लोगों ने टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा और आज के अखबारों में भी पढ़ा होगा, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। सच पूछे तो कल पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर लगी हुई थी, और इसका कारण आप जानते हैं कि जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के पूरी दुनिया अभी चिंतित है और ये देख रही थी कि भारत और अमेरिका इस बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि चूंकि अमेरिका भारत से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मीटिंग में स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएं। और अमेरिका थोड़ा सा नाराज क्यों चल सकता है, यूं कह लीजिए। आप जानते हैं कि भारत ने अभी तक सीधे सीधे रूस का विरोध नहीं किया है कि उसने यूक्रेन पर आक्रमण करके कोई अपराध किया है, और इसको लेकर के अमेरिका ही नहीं बल्कि थोड़े से पश्चिमी राष्ट्र भी नाराज से हैं और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि भारत को अपना जो आचरण है या कह लीजिए अपना जो पक्ष है वो बहुत स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि आपने इस बीच में यह भी पढ़ा होगा कि यूक्रेन में एक जगह है बूचा, वहां बहुत ज्यादा आप यूं कहिए लोगों की हत्या हुई, युद्ध में मारे गए, उसको लेकर के भारत ने सीधे सीधे आलोचना की। उसने इस नरसंहार कह लीजिए या जो मौतें हुई हैं सीधे सीधे उसकी आलोचना की, और भारत शुरू से ही यह बात कहता रहा है कि समस्या का जो हल है वो राजनयिक बातचीत है और शांतिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कल जो भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई उसमें कहीं कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं दिखाई दी, बातें बहुत ही सामान्य स्तर पर रही। भारत ने अपना पक्ष रखा, अमेरिका ने अपनी बातें कही, उसमें जानने के लिए कुछ विशेष नहीं है। लेकिन एक आप यूं कह लीजिए कि जिसकी आशंकाएं कुछ लोगों के दिमाग में थी, कम से कम वे आशंकाएं निराधार साबित हुई। इस बीच में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता भी आज होगी, उसके बाद अगर कुछ तथ्य सामने आए ऐसे जो आपको जानने चाहिए तो उस पर हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। इस बीच में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को जाना पड़ा और अब बकायदे शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और मजेदार बात यह है कि बनने से पहले और बनने के बाद उन्होंने सीधे सीधे कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है कि भारत से हम बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन यह कश्मीर मिलने के बाद ही हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि भले ही आप कुछ भी कहते रहे, दुनिया जानती है आपके भी जो नियत है वो बहुत साफ है कि आप संबंध बेहतर बनाना चाहते ही नहीं, क्योंकि आपने जो शर्त रखी है आप जानते हैं कि आप कितनी गलत शर्त रख रहे हैं जो संभव ही नहीं है। और सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का विलय भारत में हुआ है वो बड़े संवैधानिक कानूनी तौर पर हुआ है, वहां के महाराजा ने ऐसा किया है, तो आप उस पर कैसे अपना अधिकार जता सकते हैं। लेकिन इसका कारण आप सब भी जानते हैं फ्रेंड्स कि चूंकि जो पाकिस्तान की सत्ता है वो भले ही ऊपर से डेमोक्रेटिक दिखाई दे रही हो कि वहां चुनाव होते हैं, लेकिन जो सेना है उसकी बहुत जबरदस्त पकड़ पाकिस्तान की राजनीति पर है। तो सेना सीधे आकर के तो यह बात नहीं कह सकती, लेकिन वह बात कहला लेती है जो उसके डेमोक्रेटिक लीडर हैं उनके मुंह से। और खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के तनाव को दिखा करके यूं कह लीजिए कि सेना जो है वो अपनी रोटी सेकती रहती है। पाकिस्तान में यह स्थिति कब आएगी सच्चे लोकतंत्र की हम नहीं जानते, लेकिन जब तक यह स्थिति नहीं आती है तब तक लगभग लगभग ये मान करके चलते हैं राजनीतिज्ञ कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनने में बहुत दिक्कत होगी। इस बीच में जो एक घटना हुई है उसकी चर्चा यहां मैं विशेष रूप से करना चाहूंगा, और वो ये है कि इससे पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चूंकि ये चीजें काफी मिलती हैं, मैं इसीलिए इधर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई और उस पर मतदान होना था, सीधी सी बात है। लेकिन इससे पहले कि उस पर मतदान होता, वहां के जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह को मानते हुए मतदान नहीं कराए और सीधे सीधे संसद के भंग करने की घोषणा कर दी। संसद को आप भंग कर रहे हैं, अब आप देखिए, तो संसद भंग करने की घोषणा कर दी, जो विपक्ष जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया। इसके बाद फिर से संसद की बैठक हुई, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान साहब को हारना ही था, वे हारे और फिर अब शाहबाज शरीफ वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप पाएंगे कि भारत का भी पैटर्न लगभग लगभग जो संसद का है इसी तरह का है। अब आप देखें कि यहां एक दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि प्री में भी इस तरह के कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए। यह मामला डिप्टी स्पीकर को छोड़ दीजिए, आप स्पीकर को लीजिए कि ये जो स्पीकर हैं वहां भी, यानी कि पाकिस्तान में भी और भारत में भी, जिसकी सरकार होती, यानी कि जिस दल की सरकार होती है उसी दल का स्पीकर होता है। अगर आप चुनाव भी करा लें तो आप जानते हैं कि लोकसभा में तो बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, तो जब आप चुनाव कराएंगे तब भी उसी दल का स्पीकर होगा, ठीक है। अब आप देखें कि जब उसी दल का स्पीकर होगा तो जब इस तरह के आप यू कह लीजिए क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा होंगे तो ये माना तो यही जाता है कि वो बहुत ही तटस्थ होकर संविधान के दायरे में अपने निर्णय लेगा, लेकिन सामान्यतः ऐसे समय पर जो उनके अपने राजनीतिक हित हैं वो बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर ने किया। तो इसलिए फिर एक प्रश्न यह भी उठता है, तो क्या अनिवार्य रूप से जो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हों वे विपक्ष के ही हों? आप कह सकते हैं कि फिर तो इस तरह की बातें नहीं होंगी, लेकिन यहां फिर एक सवाल उठता है कि अगर विपक्ष का ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो जाता है तो स्पीकर का काम देखिए कि वो लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करे, और विपक्ष जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा करते हैं, आपका अनुभव है इसका, तो ऐसी स्थिति में फिर से एक दिमाग में संशय उठता है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही विपक्ष के हो गए तो फिर पता नहीं लोकसभा की कार्यवाही कितने सुचारू रूप से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि फिर वो सरकार के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखाई देगा। अगर ये सरकार के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं तो वो सरकार के अगेंस्ट में खड़े हुए दिखाई देंगे, तो इससे तो फिर एकदम बाधा खड़ी हो जाएगी, काम आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही डिबेटेबल, यानी कह लीजिए कि बहस का विषय है, और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर थोड़े से अच्छे से विचार करें, इसे यूं ही जाने न दें। और एक बात अच्छी दिखाई दी इस पाकिस्तान के मामले में कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी तटस्थता बनाए रखी, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा करके उसने एक प्रकार से पाकिस्तान में लोकतंत्र को बचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। रेडियो न्यूज में दोस्तों आपने सुना होगा कि हमने जो हेलिना है उसका सफल परीक्षण किया है, ये है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। ये मिसाइल है और सबसे बड़ी बात है यह स्वदेशी है, तो आपको बस नाम याद रहना चाहिए, हेलिना। इस बीच में नीति आयोग ने कल ही एक सूचकांक जारी किया है, पहली बार ऐसा किया गया है, तो मुझे लगता है कि चूंकि पर्यावरण एक बहुत ही संवेदनशील विषय हो चुका है दुनिया के लिए और भारत के लिए भी, तो हमने एक ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक जारी किया है और नीति आयोग ने जारी किया है। देखिए, दोनों हैं, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। तो इसमें जो बड़े राज्य हैं उस बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर रहा है, फिर है केरल और फिर है पंजाब। तीन के बारे में जानना आपके लिए सफिशियंट होगा। गुजरात सबसे अच्छा कर रहा है ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में, फिर है केरल और फिर पंजाब। और जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में सबसे अच्छा कर रहा है गोवा, फिर है त्रिपुरा और फिर है मणिपुर। प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए इससे यह सिद्ध हो रहा है कि किस तरीके से अब भारत ने एक तरीके से राज्यों के बीच में प्रतियोगिता की भावना पैदा कर दी है। आप देखते हैं स्वच्छता सूचकांक जारी होता है, इसके बाद फिर और जो दूसरे दूसरे सेक्टर हैं उनको लेकर के लगातार इस तरह के सूचकांक जारी होते हैं, तो इससे राज्यों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है कि नहीं नहीं हम अच्छा करेंगे, हम उससे आगे निकलेंगे, अगर कोई सबसे अच्छी पोजीशन में है तो हम अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे। और सच पूछे तो इस तरह के सूचकांक का उद्देश्य भी मूलतः यही है। दोस्तों इस बीच में श्रीलंका की जो स्थिति है आप सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। श्रीलंका की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसकी शुरुआत वहां की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति से हुई थी और अब ये बिल्कुल श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानने लगी है कि इस बिगड़ी हुई स्थिति के लिए चीन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और शुरू से ही लोग श्रीलंका के प्रति आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जिस तरीके से श्रीलंका लगातार चीन की तरफ झुकता चला जा रहा है, उससे कर्ज लेता चला जा रहा है, तो एक दिन इस लिए गए कर्ज के दलदल में वो फंस जाएगा। और लगभग यही स्थिति हुई। जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो एक सिचुएशन ये आ गई कि राजनीतिक संकट भी उठकर खड़ा हो गया और वहां हड़तालें हो रही हैं, बंद हो रही हैं, सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा। लेकिन इस बीच भारत का चूंकि वो पड़ोसी देश है, मित्र देश भी है, तो भारत ने लगातार उसकी मदद करने की कोशिश की है और उन्हें अनाज से और पेट्रोलियम पदार्थों से बाकायदे सहयोग दिया है, वहां अपनी ओर से भिजवाया है। कुछ राजनयिकों का यह भी कहना है कि ऐसे समय में भारत को श्रीलंका के साथ खड़ा होना चाहिए और भारत ऐसा कर भी रहा है। आगे देखते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो फ्रेंड्स आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के हैं बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और अभी रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ₹2000 का बेनिफिट भी मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो कुछ दोस्तों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनके नाम है गुंजा कुमारी, आपका गांव है रघुवरपुर समस्तीपुर बिहार से, वीरदा अभय प्रवीण भाई राजकोट गुजरात से, लोकेश सिंह पवार जोधपुर राजस्थान से और धर्म राज सिंह कछरा मध्य प्रदेश से। तो गुंजा कुमारी, वीरदा अभय, लोकेश सिंह और धर्मराज सिंह, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं विवेक कुमार सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।